मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 20 फरवरी 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप से एक जरूरी सूचना शेयर करनी है और वो सूचना ये है, फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 19 फरवरी से एकेडमी की 15 दिन की क्लासेज शुरू हो गई हैं और पूरे देश से उसमें स्टूडेंट आए हुए हैं, तो बट नेचुरल है कि मेरा अब पूरा वक्त एक एक मिनट उन स्टूडेंट्स के साथ गुजर रहा है। इसलिए मित्रों, मेरे पास अब मेरी स्थिति वह नहीं है, मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर और डेली ऑडियो लेक्चर उसी पैटर्न पर तैयार कर सकूं जिस पैटर्न पर वह अभी तक आपको प्रोवाइड किया जा रहा था। दोस्तों, उसको तैयार करने में अगर मैं उस पैटर्न पर गया तो इतना वक्त लगता है कि शायद मैं कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। 9 अखबार पढ़ना, न्यूज सुनना, फिर थोड़े से उसके पॉइंट्स बनाना, फिर उस पर विचार भी करना, फिर लाइफ मैनेजमेंट के लिए विषय तैयार करना और फिर रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुंचाना, बहुत लंबे वक्त की मांग करता है मित्रों। तो इसलिए खासकर सूचना यह है कि मैं उस पैटर्न पर तो आपको डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जैसा कि वायदा आपसे किया गया था कि कुछ न कुछ आपको लगातार डेली ऑडियो लेक्चर में मिलता रहेगा। इससे पहले होता यह था कि 15-16 दिनों तक कोई भी ऑडियो लेक्चर या लाइफ मैनेजमेंट प्रोवाइड कर पाना संभव नहीं होता था, तो इसीलिए वो ब्लैंक होता था। तो यूं कह लीजिए कि 15-16 दिन के लिए एकेडमी से आपका रिश्ता लगभग लगभग टूट सा ही जाता था। हाँ, जो प्रेस क्लिपिंग्स थी वो आपको एज इट इज मिलती थी, बाकी चीजें प्रोवाइड नहीं की जा सकती थी। इस बार प्रेस क्लिपिंग्स भी आपको मिलेगी, आपको लाइफ मैनेजमेंट भी मिलेंगे और डेली ऑडियो लेक्चर भी मिलेगा। बस फर्क केवल इतना है मित्रों कि ये सब के सब पहले से रिकॉर्डेड होंगे, यानी कि लाइफ मैनेजमेंट भी पहले से रिकॉर्डेड है, लेकिन विषय लाइफ मैनेजमेंट के ऐसे ही होते हैं जिसे आप बिल्कुल नया मान सकते हैं। और जहां तक डेली ऑडियो लेक्चर के प्री रिकॉर्डिंग का सवाल है मित्रों, उसके लिए मैंने बहुत सोच समझकर मैंने विषयों का चयन किया है। जिन विषयों पर भी हम लोग अब डेली ऑडियो लेक्चर पर बातें करेंगे, मान करके चलिए कि वो सारे के सारे विषय आपके सिविल सर्विस परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, या फिर वो आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करने के बारे में कुछ बताते हैं। यानी कि भले ही अब हम रेडियो न्यूज को अपना आधार नहीं बना पा रहे हैं, अखबारों को अपना आधार नहीं बना पा रहे हैं बातचीत के लिए, अदरवाइज अखबार की क्लिपिंग्स तो आपको मिलेंगी ही, लेकिन जो टॉपिक उठाए जाएंगे वो मान करके चलिए कि किसी भी मायने में पहले से कमतर नहीं है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि अब कम से कम एक ऐसा मौका है जब हम एक टॉपिक को लेकर उस पर थोड़े विस्तार से बातें कर सकते हैं। यानी कि उस पर 15-20 मिनट तक की बातें आप सिर्फ एक टॉपिक पर सुनेंगे। और यूं मान कर चलिए कि अगर आप करेंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उस एक टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। हाँ, न्यूज में कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट थी भले ही वो मैं नहीं बताने की स्थिति में हूं, लेकिन एक टॉपिक जो बताने की स्थिति है मित्रों, उसे आप कम वैल्यूएट मत कीजिएगा, आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि इन डेली ऑडियो लेक्चर्स को भी आप उतना ही महत्व देंगे जितना कि आप इससे पहले के डेली ऑडियो लेक्चर्स को महत्व देते रहे हैं। जहां तक आपके ईमेल का सवाल है मित्रों, आपके ईमेल आमंत्रित हैं। मैं रोज आपके ईमेल देखता हूं और वो सारे के सारे ईमेल मेरे पास इकट्ठे होते हैं और बाद में जब रेगुलर बेसिस पर डेली ऑडियो लेक्चर पुराने पैटर्न पर प्रोवाइड किए जाएंगे, उस समय जो प्रश्न आपके होंगे, जो बातें होंगी, वो सारे के सारे फिर जो नया शुरू होगा उसमें शामिल किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह कि मेरी कोशिश है कि ये जो गमला लगाया गया है। इस गमले में रोज ही किसी न किसी तरीके से पानी दिया जाता रहे ताकि वो जो पौधा है वो हरा भरा रहे और फूलता फलता रहे, बजाय इसके कि उसमें पानी देना बंद कर दिया जाए। और 15-16 दिनों के लिए मैं अपने प्रिय श्रोताओं से, जिनका इतना सम्मान मुझे मिलता है, इतना प्यार मुझे मिलता है, उनसे मैं बिल्कुल अलग हो जाऊं। तो दोस्तों, बहुत सोच समझ कर फिर यह निर्णय लिया गया है और मुझे लगता है कि इस निर्णय को भी आप लोगों का उतना ही प्यार और सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करते हैं। और आज के लिए मैंने टॉपिक चुना है खासकर भारत और चीन के संबंधों को लेकर, लेकिन भारत और चीन के संबंध नॉट एज ए होल, ये उसके संपूर्ण संबंधों को लेकर नहीं है। एक जो करेंट अफेयर्स में जो बातें चल रही हैं, मैंने भारत और चीन के संबंधों को उसी संदर्भ में उठाया है, क्योंकि अब सिविल सर्विस परीक्षा में करंट को लेकर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्लीट नहीं पूछा जाएगा कि भारत और चीन के संबंध क्यों तनावपूर्ण हो रहे हैं या पहले क्या रहे हैं, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप लोग अखबार से जुड़े हैं, न्यूज से भी जुड़े हैं, और एक नाम आपको अक्सर सुनने को अभी फिलहाल मिल रहा होगा, और वह है मसूद अजहर का। जो मसूद अजहर है, ये बेसिकली जैश ए मोहम्मद एक गुट है, उसके हेड हैं मसूद अजहर। आप देख रहे हैं कि मसूद अजहर को भारत वैश्विक स्तर पर वैश्विक आतंकी कह लीजिए घोषित कराने की कोशिश में लगा हुआ है। यानी कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी की पूरी दुनिया में आतंक फैलाना चाहता है। उसका कारण यह है फ्रेंड्स कि नो डाउट कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां जो चल रही हैं वो आप बहुत अच्छे से अब तक जान चुके हैं। उसको आतंकवादी गतिविधियां का मतलब ही नहीं कि वहां आतंकवादी एक्टिविटीज हो रही हैं, बल्कि जो आतंकवादी जो संगठन हैं उनके वहां कैंप हैं, उनके यहां बाकायदे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और ये भी कहा जाता है कि वहां के सरकार का, सेना का उन सबको सपोर्ट भी है। यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। तो भारत लगातार पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश मनवाने की कोशिश में लगा हुआ है, और उसे काफी सफलता भी मिल रही है, और दूसरे देश भी इसे स्वीकार करने लगे हैं। वैश्विक आतंकी कहने का मतलब है कि ये पूरी की पूरी दुनिया में आतंक फैला सकता है, और भारत में उसने ऐसा किया है। और पिछले ही साल जनवरी में जो पठानकोट पर हमला हुआ था उसमें इसका हाथ माना जाता है, और भी कई मामलों में माना जाता है। तो मित्रों, और मतलब आपको मैं कितनी घटनाएं बताऊं, खासकर जो कांधार विमान अपहरण हुआ था उसमें इस मसूद को रिहा करवा लिया गया था। अपहरण कांड के बाद जो 1999 में एक कांधार में भारतीय विमान का अपहरण हुआ था, जिसमें मेरे बैचमेट थे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, वो भी थे। इसके बाद संसद में जब हमारे संसद पर जब हमला हुआ 2001 में, तो वो भी जैश ए मोहम्मद से उसका रिलेशन माना जाता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा पर हमला हुआ था उसमें भी माना जाता है। तो कई मामलों का इसको मास्टरमाइंड माना जाता है। तो दोस्तों, भारत को अगर इसे वैश्विक आतंकी घोषित करना है तो बट नेचुरली कि मामला यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ले जाना पड़ेगा, और भारत ये मामला यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इससे पहले दो बार ले जा चुका है। आपको मालूम है कि उसमें एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है जिसे हम सुरक्षा परिषद कहते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो का पावर है। आपको मालूम है उसमें चीन भी एक है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, रशिया है, फ्रांस है, ये 5 देश हैं, इनको वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कि यदि किसी भी प्रस्ताव को इन 5 देशों में से एक भी देश पारित नहीं करेगा, इनकार कर देगा, यानी कि वीटो कर देगा, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। तो जब फ्रेंड्स मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में गया तो बाकी देश तो तैयार थे इसके लिए, लेकिन चीन ने उसको वीटो कर दिया। और चीन ने एक बार नहीं बल्कि दो बार उसको वीटो किया है, और अब स्थिति यह है कि अब तीसरी बार फिर से सुरक्षा परिषद में मामला जाने वाला है कि इसको वैश्विक आतंकी घोषित किया जाए, और इस बार ये मामला अमेरिका लेकर आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका खासकर आतंकियों के खिलाफ थोड़े से हार्ड स्टेप उठा रहा है, उसने उठाने शुरू कर दिए हैं। और यह लग रहा है कि शायद चीन इस बार भी इसे विटो कर देगा, यानी कि फिर से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित नहीं किया जा सकेगा, यह लगभग लगभग माना जा रहा है। हां, एक बात जरूर हुई है कि शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण, आपने पिछले सप्ताह ही न्यूज में देखा होगा कि पिछले सप्ताह में कि मसूद अजहर को पाकिस्तान की सरकार ने फिलहाल नजर कैद कर दिया है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता। भारत का कहना यह है कि ये एक दिखावा है, इससे कुछ नहीं होना जाना है, विश्व के दबाव के आगे झुक करके पाकिस्तान ने ऐसा किया है, लेकिन कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है तब तक जब तक इसे वैश्विक आतंकी घोषित न किया जाए। दोस्तों, ये इसकी पृष्ठभूमि थी। अब आइए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में चीन क्यों इसे वैश्विक आतंकी घोषित नहीं कर रहा है, वो कौन से कारण हैं, है ना। अब हम उन राजनीतिक कारणों को देखते हैं और उन कारणों में फिर हम भारत को देखते हैं, क्योंकि भारत ने शुरू में यह प्रस्ताव रखा था कि उसे वैश्विक आतंकी घोषित किया जाए। तो अब हम भारत और चीन के संबंधों को इस मसूद अजहर की पृष्ठभूमि में देखेंगे, राइट। तो ये एक छोटा सा टुकड़ा है, बहुत मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, केवल आपको उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि चीन क्यों अड़ंगा लगा देता है, आखिर में उसको क्या इससे मिलता है, राइट। जिसे पूरी दुनिया वैश्विक आतंकी मान रही है और पूरी दुनिया एक तरह के इस तरह के आतंकवाद से भी ग्रस्त है, त्रस्त है, उसको चीन अंततः सपोर्ट क्यों कर रहा है, आखिर में चीन का क्या इंटरेस्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं पहले तो आपको तीन पॉइंट बताता हूं, मेजर पॉइंट्स, जिसे आप जान सकेंगे कि चीन का क्या इंटरेस्ट है, है ना। अभी तो हम भारत के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, इसको क्लियर रखिएगा कि आखिर में चीन का इंटरेस्ट क्या है, वो क्यों मसूद अजहर को आतंकी घोषित नहीं करना चाहता। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली जो बात है वो आपको मालूम होगी कि चीन पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। आपको ये मालूम होगा कि इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो बेसिकली पाकिस्तान से निकल करके चीन तक जाएगा, वो पूरी की पूरी यूं कह लीजिए कि हाईवे बना रहा है, और पाकिस्तान का जो ग्वादर स्थान है बंदरगाह, वहां से ये बनना शुरू हो रहा है, जो अक्साई, जो एक तरीके यूं कह लीजिए कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। आप जानते हैं कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, नाम से ही है कि कश्मीर का वह हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में ले रखा है, है ना। उसके पीछे एक दूसरी कहानी है जिसे पाकिस्तान भी, मतलब भारत उस तरह से स्वीकार नहीं कर पाता, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, वो पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। तो पहली बात तो यह कि वो पाकिस्तान के चूंकि क्षेत्र में ही नहीं है, तो बटने चले कि भारत उसका विरोध करेगा ही, और भारत उसका विरोध कर रहा है और करना भी चाहिए। अब उसमें दिक्कत यह है दोस्तों कि अब चीन को यह लगता है कि अगर उसने पाकिस्तान में रहने वाले मसूद अजहर को आतंकी घोषित कर दिया तो चीन के साथ हो सकता है कि उसके संबंध खराब हो जाए, पाकिस्तान के साथ उसके संबंध खराब हो जाए, और जो पाकिस्तान के संबंध अगर उसके साथ खराब हो जाएंगे तो ये जो कॉरिडोर का जो मामला है जिसको वो बहुत ज्यादा एम्बिशन प्लान है उसका, और जिसमें उसके अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं जिस प्रोजेक्ट पर, उसका क्या होगा। तो अब ये कह लीजिए कि मजबूरी में ही सही, लेकिन चीन उसका एक अनिवार्य, उसकी अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को चीन नाराज कर सके, राइट। मतलब पाकिस्तान से दोस्ती निभाना, पाकिस्तान के पक्ष में बात करना चीन की मजबूरी हो गई है कुल मिलाकर, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से फर्स्ट पॉइंट। जो सेकेंड पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि पाकिस्तान में और भी आतंकवादी गतिविधियां इस तरह से होती रहती हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो चीन के मजदूर इस कॉरिडोर में जो काम करते हैं उनकी सुरक्षा चाहिए, तो उनकी सुरक्षा करने वालों में ये खुद भी हैं, जो मैंने बताया जैश ए मोहम्मद जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो उनकी रक्षा करता है, मतलब सेना के साथ वह भी मिलकर के उनको एक तरीके से यूं कह लीजिए कि सपोर्ट करता है उनकी, ताकि वो अपना काम आराम से कर सके। ये सेकेंड पॉइंट है, राइट। जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, ये भी माना जाता है कि चीन का एक स्टेट, एक प्रांत है जिसको शिनचियांग कहते हैं, वहां पर कुछ मुसलमान विरोधी गतिविधियां, मतलब जो मुसलमान हैं वो कुछ विरोधी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, उसको लेकर के भी चीन में ये आशंका बनी हुई है कि यदि वो मसूद को आतंकी घोषित करवा देगा, समझने की कोशिश कीजिएगा सिंपल तरीके से, कि चीन में भी कुछ जो संगठन है वो मुसलमानों के बारे में बात करने लगे हैं, उस तरह की एक्टिविटीज शुरू हो गई है। चीन को यह लगता है कि अगर उसने मसूद अजहर को आतंकी घोषित करा दिया तो इसके खिलाफ वो जो मुसलमान जो गतिविधियां कर रहे हैं, जो मुस्लिम संगठन गतिविधियां कर रहे हैं, वो और एक्टिव हो जाएंगे, चीन से नाराज हो जाएंगे। तो एक तरीके से कट्टरपंथी वहां और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो चीन के लिए ये संकट हो जाएगा। तो उसको लगता है कि क्यों बैठे ठाली ये संकट खड़ा किया जाए, तो ज्यादा अच्छा है कि ठीक है उसको आतंकी घोषित नहीं करते। तो दोस्तों ये तीन मेजर कारण है। पहला मैंने आपको बताया कि कॉरिडोर का बनाया जाना, तो पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता चीन। दूसरा ये कि मसूद अजहर को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका जो ग्रुप है वहां उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आप देखिए कि किस तरह से क्या चीजें हो रही हैं। और तीसरा यह कि चूंकि उसके यहां भी इस तरह की गतिविधियां थोड़ी सी शुरू हो गई है मुसलमानों की, तो नहीं चाहता कि ये जो कट्टरपंथी हैं इसका सहारा लेकर के फिर लोगों को भड़काएं कि देखो चीन कैसे मुसलमानों के विरोध में है और ये है इस्लाम का नाम लेकर के, फिर वो उस तरह से एक्टिविटीज शुरू न करे, तो ये तीसरा डर है। दोस्तों अब हम आते हैं भारत के साथ इसका क्या लेना देना है। ये बहुत सिंपल सी बात है। देखिए कि अभी यूं मान लीजिए कि पूरी दुनिया में अब जो इकोनॉमी इमर्ज हो रही है उसमें चीन तो खैर काफी इमर्ज हो चुका है और सेकंड में भारत है। और चीन अब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है कि अब उसे मतलब अमेरिका का स्थान लेना है। और ट्रंप के आने के बाद आप देख रहे हैं कि अमेरिका में जो संकट पैदा हो रहा है, तो बहुत से राजनयिक ये भी मानने लगे हैं कि अब जो विश्व शक्ति का जो स्थान खाली होगा अमेरिका के इस तरह की कार्रवाइयों से, तो उसका स्थान चीन लेगा। तो चीन के एम्बिशंस बहुत ज्यादा हो गए हैं और चीन के इस एम्बिशन को अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ भारत रोक सकता है। इसलिए भी कि चीन में पिछले 3-4 सालों से उसकी जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कम हुई है, मतलब पहले की तुलना में कम हुई है, भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो उससे इस बात का भय है कि भारत आगे चलकर उसका कॉम्पिटिटर बन जाएगा, तो वो अभी भारत विरोधी नीतियां अपना रहा है। पहली बात तो भारत के रास्ते में जानबूझकर रोड़ा अटकाएगा। दूसरा दोस्तों सीधी सी बात है कि ग्वादर से जो रास्ता निकलेगा वो भारत के पाक अधिकृत कश्मीर से निकलेगा, तो जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है तो भारत उसका विरोध कर रहा है, शुरू से कर रहा है। तो अगर वो उसे मान लेता है तो फिर वो भारत के विरोध में खड़ा नहीं हो सकेगा। मान लिया इसका मतलब है कि उसने भारत के सामने सरेंडर कर दिया, तो इस चीज को वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। एक बात आप और भी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि भारत और अमेरिका के संबंध लगातार अच्छे होते जा रहे हैं और चीन अमेरिका का कॉम्पिटिटर है, तो ऐसी स्थिति में दुश्मन का दोस्त तो आपका दुश्मन होगा ही होगा। तो चूंकि वो मान करके चल रहा है कि भारत और अमेरिका एक साथ है, तो ऐसे में फिर वो पाकिस्तान को अपने साथ लेकर के अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता है, इसीलिए फिर वो भारत के खिलाफ खड़ा होता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स जो एक चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, जो इमीडिएट कारण है और ये आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, और वो ये है कि साउथ चाइना सी का प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, दक्षिण चीन सागर। लगातार अखबारों में ये बात आ रही है, दक्षिण चीन सागर पर चीन लगातार अपना प्रभुत्व बढ़ाते चले जा रहा है, बावजूद इसके कि अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण ने, न्यायालय ने आप कह लीजिए, उस तरह का न्यायालय नहीं है, वो अलग किस्म का है, सीधे सीधे चीन की इस कार्यवाही को गलत ठहरा दिया है। इसके बावजूद चीन यह बात नहीं मान रहा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आप कह लीजिए कानूनों तक के उल्लंघन में वो बाज नहीं आ रहा है। और कारण यह है कि दक्षिण चीन सागर में जो ऊर्जा के जो साधन हैं वो उनको हथियाना चाहता है कि उस पर उसका कब्जा हो जाए, और दक्षिण चीन सागर में वो ऐसा न कर सके इसके लिए कुछ देश, तो छोटे छोटे देश तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें दो सबसे बड़े देश हैं, एक जापान और दूसरा भारत। तो जापान, भारत और अमेरिका, ये कह लीजिए कि तीन ऐसे बड़े राष्ट्र हैं, शक्तिशाली राष्ट्र हैं, जो चीन की जो साउथ चाइना सी की जो एम्बिशंस है उस पर रोड़ा अटका रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में भी चीन एक तरह से कह लीजिए कि बौखलाया हुआ है, उसकी भौहें तनी हुई है, और ये तीनों देश अपनी अपनी नौसेनाएं समय समय पर संयुक्त अभ्यास के लिए भेजती भी रहती हैं। तो ऐसे में चीन भारत का विरोध कर रहा है। और आपने बहुत आपको मालूम ही होगा कि पिछले साल भारत लगभग लगभग न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो NSG कहलाता है उसका सदस्य बन ही गया होता, लेकिन उसमें जो मामला अटकाया था वो चीन नहीं अटकाया था, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। तो मित्रों, ये कुछ ऐसी पृष्ठभूमि है जो जिनके कारण चीन भारत का लगातार विरोध करता रहता है, और जहां भी उसे इस तरह का मंच मिलता है वो उसमें बाधाएं डालेगा, रोड़े अटकाएगा और भारत के विकास को रोकने की कोशिश करता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये सामान्य सी जानकारी मैंने आपको मसूद अजहर की पृष्ठभूमि के तहत दी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में भी। नेबरिंग जो कंट्री हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, सिलेबस में वो दिया हुआ है। भारत चीन संबंधों को लेकर के दक्षिण चीन सागर को तो लेकर के 2016 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, और जिस तरह से तनाव बढ़ता चला जा रहा है तो अगर ये फिर से पूछ लिया जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं है, और यहां तक हो सकता है कि इससे प्री में भी एक आध क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।